नमस्कार भारत 23 मार्च शुक्रवार, मैं हूं आदर्श राठौर। अमेरिका और चीन के बीच गहराया कारोबारी जंग का खतरा, ट्रंप ने चीन पर लगाया 60 अरब डॉलर का शुल्क।
With China, we're going to be doing a section 301 trade action. It could be about $60 billion.
बहुमत होने के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव से क्यों टलती हुई नजर आ रही है मोदी सरकार?
ओपन एंडेड डिबेट होती है और उस पे मेरा ख्याल सरकार थोड़ा बैकफुट पे है, उसको एम्बैरेसमेंट होगी, इसलिए मुझे लगता है कि वो नहीं चाहती।
भगत सिंह की पुण्यतिथि पर बताएंगे, उनकी विचारधारा को अपने हिसाब से दिखाने की कोशिश क्यों करती हैं पार्टियां। होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन उससे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। अमेरिका ने चीनी सामान पर 60 अरब डॉलर का शुल्क लगाने और अपने यहां चीन के निवेश को सीमित करने का फैसला किया है। अमेरिका ने यह कदम कथित तौर पर कई सालों से हो रही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी के बदले में उठाया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि चीनी अर्थव्यवस्था से मिलने वाली अन्यायपूर्ण चुनौती से मुकाबला करने के लिए उचित कदम उठाना जरूरी है। उधर चीन का कहना है कि इसके जवाब में वह उपयुक्त पलटवार के लिए तैयार है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉन बोल्टन को अपना नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। वो जनरल एचआर मैकमास्टर की जगह लेंगे, जिन्हें हाल में पद से बर्खास्त कर दिया गया था। 69 साल के बोल्टन संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के दूत रह चुके हैं। वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति रोनल्ड रीगन, जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ काम कर चुके हैं। उन्हें साल 2003 के इराक हमले का समर्थन करने के लिए जाना जाता है। वो ईरान और उत्तर कोरिया के खिलाफ सेना के इस्तेमाल की वकालत करने के लिए भी जाने जाते हैं। इससे पहले 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप की जांच में डोनाल्ड ट्रंप का प्रतिनिधित्व कर रहे मुख्य वकील जॉन डाउट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। भारतीय विमानन कंपनी एयर इंडिया का एक विमान सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र से होते हुए इसराइल पहुंचा है। इस उड़ान को ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। इसराइल के यातायात मंत्री इस्राएल कात्स ने कहा है कि तेल अवीव पहुंचने वाली एयर इंडिया की ये उड़ान उनके और सऊदी अरब के बीच पहला आधिकारिक संबंध है। सऊदी अरब इसराइल को मान्यता नहीं देता। उड़ान के इसराइल में लैंड करने के बाद इसराइल के लिए भारतीय राजदूत पवन कपूर ने कहा कि ये इसराइल और भारत के संबंधों को घनिष्ठ बनाने की दिशा में लिया गया महत्वपूर्ण कदम है।
It's been more than 20 years since we had an Air India flight come from India to Israel, and so it's a wonderful occasion.
इसराइल की जमीन पर एयर इंडिया के किसी उड़ान को उतरे दो दशक से अधिक हो गया है। ये एक बेहद खास मौका है और मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे और इसराइल के बीच दोस्ताना संबंध और मजबूत होंगे। इसराइल के लिए भारतीय राजदूत पवन कपूर। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फायरफॉक्स इंटरनेट ब्राउजर बनाने वाली कंपनी मोज़िला ने कहा है कि जब तक फेसबुक उपभोक्ताओं के डेटा की सुरक्षा के लिए कड़े नियम नहीं बनाता, तब तक वो फेसबुक पर विज्ञापन नहीं देगी। कंपनी की संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष मिचेल बेकर ने कहा कि वो चाहती हैं कि फेसबुक एकत्र किए डेटा का इस्तेमाल किस तरह करता है, इस पर और अधिक पारदर्शिता अपनाए।
The general setting of what's happening there, what's happening with user information.
इस मामले में जो कुछ हुआ है, उपभोक्ता से इकट्ठा किए डेटा के साथ जो कुछ भी हो रहा है, वो असहज करने वाला है। हम कश्मकश में हैं और ये जानना वाकई में मुश्किल है कि असल में क्या हुआ था। हमें लगता है कि फेसबुक इस्तेमाल करने वाला आम उपभोक्ता भी ये नहीं जान पाता होगा और इसीलिए ये एकदम सही समय है कि हम सामने आएं और उपभोक्ताओं की आवाज़ बने। हम कहना चाहते हैं कि फेसबुक को इस मामले में पारदर्शी होना चाहिए और बताना चाहिए कि वो लोगों की जानकारी के साथ क्या कर रहा है, ताकि उनके पास भी सही गलत चुनने का मौका हो। फेसबुक को सभी जानकारी थर्ड पार्टी ऐप्स के लिए उपलब्ध नहीं करानी चाहिए। मोज़िला की संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष मिचेल बेकर के शब्द। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने घोषणा की है कि वो देश की मुद्रा का फिर से मूल्यांकन कर रहे हैं और उन्होंने अपने देश की मुद्रा बोलीवर से 3-0 निकाल लिए हैं। मादुरो ने देश में एक नए बैंक नोट का अनावरण किया है जो इसी साल की 4 जून से अर्थव्यवस्था में आनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने वेनेजुएला के नागरिकों से अपील की है कि वो मौजूदा नोटों को बैंक में जमा करें। बीबीसी समाचार।
بی بی سی ہندی سیوا کی پہلی سبھا نمسکار بھارت میں سواگت ہے آپ کا۔ اس کارکرم کو آپ ریڈیو کے ساتھ ساتھ بی بی سی ہندی ڈاٹ کام اور فیس بک پر بھی لائیو سن سکتے ہیں۔ میں ہوں آدرش راٹھور۔ امریکہ نے اپنے دیش میں آنے والے چینی سامان پر 60 ارب ڈالر کا شلک لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چین نے امریکہ کا لمبے عرصے سے فائدہ اٹھایا ہے لیکن اب ایسا نہیں چلے گا۔ ادھر چین نے بھی امریکہ سے بدلہ لینے کی دھمکی دی ہے۔ ایسے میں چین اور امریکہ کے بیچ ویاپار یدھ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ سنیے نیو یارک سے سلیم رضوی کی رپورٹ۔
امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا ایک اور چناوی وعدہ پورا کر دیا۔ 2016 کے چناؤ کے دوران ٹرمپ نے اپنے سمرتھکوں سے وعدہ کیا تھا کہ چین ویاپار میں امریکہ کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ اسے روکیں گے۔ گروار کو راشٹرپتی ٹرمپ نے امریکہ میں آنے والے چینی سامان پر 60 ارب ڈالر کا شلک لگانے کی گھوشنا
کی۔
راشٹرپتی ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ چین کے خلاف ویاپار قانون کے انوچھید 301 کے تحت یہ شلک لگائے جا رہے ہیں جو 60 ارب ڈالر کے قریب ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے چین کے راشٹرپتی سمیت کئی اچ نیتاؤں سے ویاپار میں انتر کو 100 ارب ڈالر تک کم کرنے کی بات کی تھی، جو کہ ان کے مطابق بہت کم ہے۔ راشٹرپتی ٹرمپ نے کہا کہ چین بہت عرصے سے ویاپار میں امریکہ کا غلط فائدہ اٹھاتا رہا ہے لیکن اب ایسا نہیں چلے گا۔ امریکہ اور چین کے بیچ ویاپار کا انتر چین کے فائدے میں 375 ارب ڈالر ہے۔ راشٹرپتی ٹرمپ نے کہا ہے کہ ابھی تو چین پر شلک بڑھانے کے سلسلے کی شروعات ہوئی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ قدم کتھت طور پر کئی سالوں سے ہو رہی انٹیلیکچوئل پراپرٹی کی چوری کے بدلے میں اٹھایا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ چینی ارتھ ویوستھا سے ملنے والی انیائے پورن چنوتی سے مقابلہ کرنے کے لیے اچت قدم اٹھانا ضروری ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ اس نے 1000 سے زیادہ اتپادوں کی سوچی بنا لی ہے جن پر شلک لگایا جا سکتا ہے۔ ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ امریکہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں بھی چین کی کتھت انیائے پورن لائسنس شرطوں کی شکایت کرے گا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ ان چنے ہوئے چینی اتپادوں پر 25% تک شلک لگائے گا جس سے چین کی نیتیوں سے امریکی ارتھ ویوستھا کو ہونے والے نقصان کی بھرپائی کی جا سکے۔ ان میں ایرو اسپیس، سوچنا اور سنچار تکنیک اور مشینری بھی شامل ہوں گی۔ اس کے علاوہ راشٹرپتی ٹرمپ نے وت منتری اسٹیون منوچن کو نردیش دیے ہیں کہ اگلے 2 مہینے کے اندر امریکہ میں نویش کرنے والی چینی کمپنیوں پر نئے پرتیبندھ لگائے جائیں جس سے امریکہ کی اہم تکنیک کی سرکشا کی جا سکے۔ وشو کے کئی دیشوں میں نیتکار امریکہ اور چین کے بیچ ویاپار یدھ شروع ہونے کی سمبھاونا سے پریشان ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں بھی ویاپار یدھ کے ڈر سے شیئر بازار میں بھاری گراوٹ درج کی گئی۔ اس کے علاوہ امریکہ کی کئی بڑی کمپنیاں جیسے والمارٹ، امیزون آدی یہ چیتا رہی ہیں کہ اگر چینی سامانوں پر شلک بڑھایا گیا تو امریکہ میں اپبھوکتاؤں کو سامان مہنگے داموں میں ملیں گے۔ لیکن ٹرمپ پرشاسن کا کہنا ہے کہ امریکی کامگاروں کی سرکشا کرنے کے لیے چین کے خلاف کارروائی کرنا ضروری ہے، اور اس میں راشٹرپتی ٹرمپ کو وپکشی ڈیموکریٹک پارٹی کا بھی سمرتھن حاصل ہے۔ سینٹ میں ڈیموکریٹک نیتا چک شومر کہتے ہیں،
I don't agree with President Trump on a whole lot, but today I want to give him a big pat on the back. He is doing the right thing when it comes to China.
میں راشٹرپتی ٹرمپ سے بہت سی باتوں میں سہمت نہیں ہوتا ہوں، لیکن آج چین پر شلک بڑھانے کے معاملے میں میں ان کی پیٹھ زور سے تھپتھپا کر شاباشی دینا چاہتا ہوں۔ وہ چین سے نپٹنے کے لیے صحیح قدم اٹھا رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک سینیٹر چک شومر کے شبد۔ ٹرمپ پرشاسن نے 1974 کے ویاپار قانون کے تحت 7 مہینے تک چین دوارا انٹیلیکچوئل پراپرٹی کی کتھت چوری کے بارے میں جانچ کروائی اور پایا کہ چین انٹیلیکچوئل پراپرٹی قانون کا الگھن کر رہا ہے۔ امریکہ کو ایسے ثبوت بھی ملے ہیں کہ چین امریکی کمپنیوں پر انیائے پورن شرطیں تھوپتا ہے، رڑنیتک طور پر اہم امریکی کمپنیوں میں نویش میں بادھا ڈالتا ہے اور سائبر حملے کرواتا ہے، اور ایسے حملوں کا سمرتھن بھی کرتا ہے۔ چین نے امریکہ کے اس فیصلے پر تیکھی پرتکریا دی ہے۔ چین کے وانجیہ منترالے نے ایک بیان میں کہا ہے، اگر چین کے وید ادھیکاروں اور ہتوں کو نقصان پہنچایا گیا تو چین چپ نہیں بیٹھے گا۔ نشچت روپ سے سبھی ضروری قدم اٹھائے جائیں گے تاکہ ادھیکاروں اور ہتوں کی رکشا کی جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے فیصلے کے بدلے میں چین ایسے امریکی کرشی اور فیکٹری اتپادوں پر شلک لگا سکتا ہے جن کے نشانے پر امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کے سمرتھک ہوں گے۔ ادھر امریکی وانجیہ منتری ولبر راس نے یہ امید جتائی ہے کہ انت میں امریکہ اور چین لڑائی کے بجائے ویاپار سمبندی معاملے بات چیت سے سلجھا لیں گے۔ اسی مہینے ٹرمپ پرشاسن نے سٹیل اور ایلومینیم سمیت امریکہ میں آنے والے کئی ودیشی سامانوں پر آیات شلک بڑھا دیا تھا، لیکن امریکہ نے اب یورپی سنگھ اور 6 انیہ دیشوں کو آج یعنی شکروار سے لاگو ہونے والے سٹیل شلک سے مکت رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن چین کے لیے سندیش صاف ہے کہ اب وہی امریکہ کے نشانے پر ہے۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
कुछ देर पहले मैंने बात की बीजिंग में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सैबल दास गुप्ता से और पूछा कि चीन में अमेरिका के इस कदम को लेकर क्या प्रतिक्रिया देखी जा रही है।
चीन के कॉमर्स मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम चुपचाप नहीं बैठेंगे और हम अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए लड़ाई करने को तैयार हैं। और चीन का जो दूतावास है वाशिंगटन में, उसने भी ये कहा है कि हम रिटेलिएशन करेंगे, हम पलटवार करने को तैयार हैं। लेकिन ये बातें हैं इसलिए कि ट्रंप का जो नया पॉलिसी है उसमें 7 दिन का समय दिया गया है पॉइंट बाय पॉइंट नेगोशिएशन करने के लिए। ट्रंप ने इस वक्त ये भी कहा है कि इस आइटम पर इतना टैक्स बढ़ जाएगा, नेगोशिएशन का स्कोप दिया है। का रणनीति यह है कि चाइना को एक एक पॉइंट पे दबाया जाए। चाइना पलटवार नहीं कर सकती है जब तक कि यूएस ने सीधा डिसीजन नहीं लिया, तो ये खेल अब बहुत दिन चलेगा, कम से कम 7 दिन तो चलेगा ही। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप ने ये भी कहा है अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को कि चाइनीज निवेशक जो अमेरिका में कंपनियां खरीद रहे हैं उन तकनीकों को हासिल करने के लिए जो चीन के पास नहीं है उस पर रुकावट कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा मसला है।
यानी चीन अब पलटवार कर सकता है और अमेरिका और चीन के बीच में व्यापारिक जंग शुरू हो सकती है।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
गुरुवार को लोकसभा में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, लेकिन हंगामा होने के कारण ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सका। विपक्ष का कहना है कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से बच रही है, लेकिन सरकार की दलील है कि सदन में इतने अधिक गतिरोध के बीच अविश्वास प्रस्ताव पेश करना मुमकिन ही नहीं है। संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन फिर भी गतिरोध बना हुआ है। हमारे सहयोगी नवीन नेगी ने बात की वरिष्ठ पत्रकार अनीता कत्याल से और पूछा कि क्या वजह है जो सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से बचती हुई दिख रही है।
नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है ना, बहुत सारे मुद्दों को लेके फिर डिस्कशन होता है उसके, उसको लेके, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो जो आजकल बहुत सेंटर स्टेज पे है, जिससे बहुत परेशान है सरकार क्योंकि उसमें काफी लोग उसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या नीरव मोदी का इशू है, तो एक इशू को लेके नहीं होता, फिर वो सारे पूरे गैमेट ऑफ इशूज को लेके ये डिस्कशन होता है जिसमें सरकार बैकफुट पर रहती है। जितनी भी खामियां होती हैं सरकार की, जितनी भी उनके प्रोमिसेस करे हुए हैं और वो नई प्रोमिसेस वो कर पा रहे हैं उनको फुलफिल, ऑपोजिशन पार्टी सब अपनी ग्रीवेंसेस इस डिबेट में रख सकते हैं क्योंकि ये एक मुद्दे पे नहीं है। मगर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो ये ओपन एंडेड डिबेट होती है, उस पर सब कुछ आ सकता है और उस पर मेरा ख्याल सरकार थोड़ा बैकफुट पे है, उसको एम्बैरेसमेंट होगी, इसलिए मुझे लगता है कि वो नहीं चाहते हैं।
ये कहा जा रहा है कि गतिरोध इतना ज्यादा है संसद में, इस वजह से अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया नहीं जा सकता, तो इसमें आप स्पीकर की भूमिका को कितना अहम देखती हैं?
एक्चुअली स्पीकर का काम है कि लोगों को आमने सामने बिठाना और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना कि आगे अब कैसे बढ़ सकते हैं मामला, क्योंकि हर दोनों साइड को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, उनको दिखता नहीं है, पर जब पार्लेज होते हैं, जब पार्टी बैठते हैं, पार्टी लीडर्स इकट्ठा चेंबर में, तो दोनों डिसाइड करते हैं कि हाउस चलने के लिए कुछ हमको कुछ पीछे हटना पड़ेगा, कुछ दूसरी साइड को भी पीछे हटना पड़ेगा, एक कंसेंसस बना के आगे चलना पड़ेगा, और उस कंसेंसस बनाने में स्पीकर का एक बड़ा अहम रोल रहता है क्योंकि वो एक निष्पक्ष पार्टी है, शी इज नॉन पार्टिजन पार्टी प्रेजाइडिंग ऑफिसर।
विपक्ष के लगातार जो है गतिरोध के बीच सरकार ने वित्तीय बिल को पास करवा दिया, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के नाम पर वो कह रही हैं कि सदन में जो इतना हो हंगामा होता है तो इस वजह से हम अविश्वास प्रस्ताव को नहीं ला सकते। क्या आने वाले वक्त में कोई भी सरकार अविश्वास प्रस्ताव को टालने के लिए इस तरह की बातें रख सकती है क्या?
नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, ये तो बिल्कुल गलत प्रेसिडेंट है। जो एक्चुअली जो फाइनेंस बिल का आपने बोला जो हल्ला गुल्ला में जो पास हो गया, वो पहली बारी नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है एक दो तीन बारी। मैं नहीं ये कहती हूँ क्योंकि सही हुआ तब भी गलत था, अब भी गलत है, नहीं होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए बिल्कुल डिमांड पर डिमांड पे और बाकी मिनिस्ट्रीज पे अच्छी तरह से, क्योंकि पार्लियामेंट का फोरम का मतलब ही यही है, और खासकर बजट सेशन में, बजट सेशन का एक ही मुद्दा होता है फाइनेंस बिल पास करना, अगर वो ही नहीं हो रहा है तो इसका पूरा मतलब ही नहीं रहा इस पूरे सेशन का। और दूसरी बात जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि ये तो बहाना बन जाता है ना कि हाँ हंगामा हो रहा है तो इसलिए हम नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला रहे। वो तो आपको पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का इसमें क्या रोल है, उनका भी एक रोल है कि लोगों से बात करो, सारे पार्टीज के लीडर से बात करो, डिसाइड करो कि अब इसको आगे कैसे हम सुलझाएं मामले को। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आगे चल के ये एक प्रेसिडेंट बन सकता है कि हंगामा होने दो और बोल दो कि हाँ जी सॉरी, ये इस हंगामे में नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे आ सकता है।
आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अनीता कत्याल को। राज्यसभा की 59 सीटों के लिए आज मतदान होने जा रहा है। इनमें से 10 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, जहां 10वीं सीट के लिए लड़ाई बेहद रोमांचक स्थिति में पहुंच गई है। 10वीं सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच सीधी लड़ाई है। दोनों ही दलों के पास जिताने लायक पर्याप्त विधायक नहीं है, फिर भी दोनों जीत के प्रति आश्वस्त हैं। कैसे, सुनिए लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
राज्यसभा के चुनाव के लिए गुणागणित तो पिछले कई दिनों से चल रही थी, लेकिन इसे अंतिम स्वरूप देने की कोशिश दो दिन पहले हुई बैठकों और डिनर पार्टियों में हुई। हालांकि डिनर पार्टी में पहुंचे नेता उसी दल के उम्मीदवार को ही वोट देंगे, इस पर भी संशय बना हुआ है। राज्यसभा के लिए 10 लोग यूपी से चुने जाने हैं। बीजेपी के 8 उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी का एक उम्मीदवार इन दलों की विधायक संख्या के आधार पर आसानी से चुन लिया जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा संकट 10वें उम्मीदवार के लिए है। बीजेपी ने इस सीट के लिए अनिल अग्रवाल को तो बीएसपी ने भीमराव आम्बेडकर को मैदान में उतारा है। बीएसपी को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन हासिल है, बावजूद इसके उसे चुनाव जीतने के लिए जरूरी 37 वोट पूरे नहीं हो पा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव पर लगातार नजर रख रहे लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार परवेज अहमद कहते हैं,
विपक्ष को ये लग रहा था कि 5 विधायक छोटे छोटे पार्टियों के हैं, क्योंकि अभी 2012 से 17 तक की सरकार में रघुराज प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी सरकार के मंत्री रहे हैं। विपक्ष ये मान के चल रहा था कि ये सारे विधायक उनके साथ आ जाएंगे, लेकिन विजय मिश्रा जो कभी समाजवादी पार्टी के विधायक थे वो इनके साथ किसी तरीके से जुड़ नहीं पाया और वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खड़े हो गए। हाईकोर्ट का एक आदेश आ गया जिसमें जेल में बंद दो विधायक मुख्तार अंसारी और हरिओम यादव दोनों को वोट डालने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब ये विपक्ष के ही दोनों विधायक थे, इत्तेफाक की बात ऐसा है, तो रघुराज प्रताप और विनोद सरोज के आने से जो इनकी ताकत मजबूत हुई थी वो दो विधायकों के कम होने से कमजोर हो गई है। तो इस अनगणित में विपक्ष कहीं अब सेंधमारी कर लेता है सत्ता पक्ष में तो ये फिर अचरज जैसा होगा, राजनीतिक विरायकी ही होगा।
दरअसल मौजूदा चुनाव में एक उम्मीदवार को राज्यसभा में भेजने के लिए 37 विधायकों के वोटों की जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी के पास 19 अपने विधायकों और 7 कांग्रेस विधायकों के अलावा 9 सपा विधायकों का समर्थन है। इस स्थिति में उसके पास 2 विधायकों की कमी है, वो भी तब जबकि इनमें से कोई क्रॉस वोटिंग न करे। आखिरी समय में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी और सपा विधायक हरिओम के चुनाव में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी है, जिससे विपक्ष के विधायकों की संख्या अब 34 ही हो रही है। शिवपाल यादव की डिनर पार्टी में सक्रिय होने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि उनके समर्थक निषाद पार्टी के विधायक विजय मिश्र भी बसपा उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया।
समाजवादी पार्टी से 3 बार मैं विधायक रहा हूँ और समाजवादी पार्टी ने हमारा टिकट काटा है, हमने समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ा, वो लोगों ने निकाला है। वो राजा है, मैं रख हूँ, मालिक रहे हैं, मालिक को अधिकार है निकालने का। उन्होंने अपना काम किया, अब अंतरात्मा की आवाज़ पर, अपने जनपद के मानित सम्मानित क्षेत्र के मतदाताओं की आवाज़ पर मैं वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कर रहा हूँ। शिवपाल यादव जी से हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, जहाँ उनकी व्यक्तिगत बात आएगी हड्डी राख तक मैं उनके साथ तैयार हूँ, लेकिन वोट के बारे में मुझसे कोई बात नहीं।
जानकारों का कहना है कि ऐसी स्थिति में राजनीतिक प्रबंधकों की भूमिका अहम होती है, लेकिन विपक्ष के पास इस समय उसकी कमी है। परवेज अहमद कहते हैं,
एक जमाना था जब बहुजन समाज पार्टी के पास नसीमुद्दीन जैसा मैनेजर होता था, समाजवादी पार्टी के पास शिवपाल यादव जैसा मैनेजर होता था, लेकिन दोनों ही इस वक्त नॉन ऑपरेटिव हैं।
बहरहाल जानकारों का कहना है कि सत्ता पक्ष के पास तमाम अन्य चीजों के अलावा राजनीतिक प्रबंधकों की भी कमी नहीं है। ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कि बीजेपी के राजनीतिक प्रबंधकों का रणनीतिक कौशल राज्यसभा में बीएसपी उम्मीदवार भीमराव आम्बेडकर का रास्ता रोक पाता है या नहीं। समीरात्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। दिल्ली से छपे अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद है मानसी दास। क्या कहते हैं आज के अखबार मानसी?
आदर्श, शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर से। इस खबर के अनुसार कैम्ब्रिज एनालिटिका प्रकरण में फेसबुक के लाखों उपभोक्ताओं के डेटा का इस्तेमाल चुनावों में किए जाने की बात सामने आने के बाद चुनाव आयोग इस मुद्दे पर गंभीर रुख अपना रहा है। इस महीने की 27 तारीख को होने वाली चुनाव आयोग की एक बैठक में चुनावों के दौरान वोटरों को प्रभावित करने के इस तरह के तरीकों से बचने के उपायों के बारे में चर्चा की जाएगी। अखबार ने नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी की को कोट किया है और उनके बयान को लिखा है, कहा है कि चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि चुनावों में वोटरों को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। अमर उजाला में छपी एक खबर के अनुसार समाज सेवी अन्ना हजारे शुक्रवार को दिल्ली के रामलीला मैदान पर अनशन करने जा रहे हैं और इस बार वो किसानों की मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अनशन में बैठेंगे। वो न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों के लिए फिक्स आमदनी की मांग कर रहे हैं। अखबार के अनुसार देश भर से किसान भी इस अनशन में हिस्सा लेने पहुंचेंगे और अनशन से पहले अन्ना हजारे ने यह साफ किया है कि उनके मंच पर किसी भी राजनीतिक दल को कोई जगह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक और खबर आपको बता दूं, इस साल अब तक भारतीय बैंकों से 19,194 करोड़ रुपए की चोरी की जा चुकी है जो बीते साल के आंकड़े से कहीं अधिक है। खबर के अनुसार सीबीआई ने गुरुवार को हैदराबाद की कंपनी टोटम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसके प्रमोटरों के खिलाफ बैंकों से कर्जा लेकर नहीं चुकाने का मामला दर्ज किया है। सीबीआई के अनुसार कंपनी पर यूनियन बैंक के नेतृत्व में 8 बैंकों के समूह से कुल 1,394 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी करने का आरोप है। ये आंकड़ा मिलाकर इस साल का आंकड़ा 19,194 करोड़ पहुंचा है और जबकि पिछले साल यानी 2017 में ये कुल 31 बैंकों से 11,770 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। और इसी पर जनसत्ता में आज का इरफान का कार्टून है। सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक लाने की जो कोशिश कर रही है उसी पर है। कार्टून में बैंक अधिकारी फोन पर किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। जब मैं बताऊंगी कि वो क्या बात कर रहे हैं तो आप समझ जाएंगे वो किन से बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आपके खिलाफ जानबूझकर कर्ज ना चुकाने और जानबूझकर देश ना छोड़ने पर FIR दर्ज होगी। अब आपको एक खबर बताती हूँ जो जनसत्ता में ही छपी है। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का इंडियन प्रीमियर लीग में खेलना अब तय हो गया है। भ्रष्टाचार निरोधी समिति द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शमी को IPL में खेलने की इजाज़त दे दी है। बोर्ड ने शमी को मुख्य अनुबंध में भी जगह दी है और उन्हें Grade B में रखा गया है जिसके तहत उन्हें सालाना 3 करोड़ रुपये मिलेंगे। इससे पहले BCCI ने शमी की पत्नी हसीन जहां के आरोपों के मद्देनजर उनका अनुबंध रोके रखने का फैसला किया था। दी हिंदू में छपी एक खबर के अनुसार गृह मंत्रालय ने एक संसदीय समिति को बताया है कि वाम चरमपंथ से जूझ रहे देश के हिस्सों में सेना के पास जो मौजूद तकनीक है यानी जो मौजूदा तकनीक उनके पास उपलब्ध है उससे गहरे लगाए गए लैंडमाइंस का पता नहीं लगाया जा सकता। मार्च 13 को छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक लैंडमाइन प्रोटेक्टेड गाड़ी में सफर कर रहे CRPF के 9 जवानों की मौत हो गई थी। ये विस्फोटक सड़क में काफी नीचे दबा कर रखा गया था और सुरक्षा एजेंसियां इसका पता नहीं लगा पाई थी। इधर नई दुनिया में छपी एक और खबर जो शायद हमारा कार्यक्रम सुन रही जो महिलाएं हैं उनको ये खबर थोड़ी अच्छी लगेगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के कारण गर्भवती हुई 17 साल की एक नाबालिग लड़की के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा है कि 8 माह का गर्भ उन्हें गर्भपात करने की इजाज़त दे दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो नाबालिग को जीवन भर दोहरा दंड भुगतना पड़ेगा।
जी मानसी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को लाहौर सेंट्रल जेल में उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इतने साल गुजर जाने के बाद भी अलग अलग राजनीतिक दल भगत सिंह की छवि अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से दिखाने की कोशिश करते हैं। भगत सिंह के प्रति ये आकर्षण भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी है। सुनिए हमारे सहयोगी नवीन नेगी की ये रिपोर्ट।
इस तराने के साथ जो तस्वीर हमारी आंखों के सामने उभरती है वह 3 युवाओं की है जो हंसते हुए फांसी की तरफ अपने कदम बढ़ाए चले जा रहे हैं। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। लेकिन भगत सिंह की पहचान सिर्फ एक देशभक्त क्रांतिकारी तक ही सीमित नहीं थी। वे एक आज़ाद ख्याल व्यक्तित्व थे। वे ना तो कांग्रेसी थे ना ही कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, लेकिन उनकी क्रांतिकारी विचारधारा पर किसी को शक नहीं था। मौजूदा वक्त में भगत सिंह की तस्वीरों को तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हितों के अनुसार गढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगत सिंह की कितनी तस्वीरें मौजूद हैं, इस पर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चमन लाल कुछ इस तरह रोशनी डालते हैं।
असलियत यह है कि उनकी जो असली तस्वीरें वो सिर्फ चार हैं। उसमें एक 10-11 साल के बच्चे की उम्र की है, सफेद पगड़ी पहने हुए हैं, वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। एक कॉलेज की ग्रुप फोटो है जब दो पढ़ते थे नेशनल कॉलेज में, उसमें ग्रुप फोटो से अलग निकाल के भी उनकी वो फोटो चलती है, उसमें भी सफेद कुर्ता पजामा और सफेद पगड़ी पहनी हुई और वो 16-17 साल की उम्र की है उनकी। और एक तीसरी तस्वीर जो है वो लाहौर के एक पुलिस स्टेशन में उनको जब अरेस्ट किया था पहली बार 1927 में, 20 साल की उम्र की, जिसमें उनके केश खुले हैं और चारपाई पर बैठे हैं। और चौथी काफी तस्वीर है जो दिल्ली के कश्मीरी गेट के एक फोटोग्राफर ने खींची थी, उसका अदालत में बयान भी है, जो हैट वाला फोटोग्राफर दिल्ली बम साइट ने इससे पहले असेंबली में चार पांच दिन पहले उसने वो भगत सिंह और दत्त दोनों अपनी तस्वीरें खिंचवा कर आए थे।
भगत सिंह की तस्वीरों को तो सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी विचारधाराओं के अनुरूप गढ़ लिया, लेकिन उनके क्रांतिकारी विचारों को परे रख दिया गया। किसी ने उन पर गेरुए वस्त्र डाल दिए तो किसी ने उन्हें भारत की सभ्यता का संरक्षक बना डाला। भगत सिंह के नास्तिकता पर विचार हों या फिर समाजवाद से जुड़े उनके लेख, कोई भी दल इन पर गौर करने की कोशिश नहीं करता। आखिर इसकी वजह क्या है? प्रोफेसर चमन लाल बताते हैं।
तो ये काम पिछले 15-20 साल में ऐसी एक सेक्शन पैदा हुआ है, इसमें बहुत सारे वेस्टर्न इंटरेस्ट भी है लोगों के, जो चाहते हैं कि भगत सिंह का जो वैचारिक रूप है, जो उनका बौद्धिक रूप है, जो उनका थिंकर चिंतक क्रांतिकारी का रूप है, वो लोगों के सामने आए ही नहीं। तो वो पता ही ना चले कि 125 राइटिंग है, 50-55 पत्र हैं, 2 उनके अदालतों के बयान हैं, 35-40 लेख हैं उनके, और बड़े महत्वपूर्ण लेख हैं उनके, क्रिटिकल राइटिंग है उनकी, सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज, अछूत समस्या, इस तरह के सामाजिक जितने विषय हैं जो आज भी हमारे समाज को उतना ही तंग करते हैं जितना उन्होंने लिखा था, तब तंग करते थे।
भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें चाहने वाले जितने सरहद के इस पार मौजूद हैं, उतने ही सरहद के दूसरी तरफ भी। भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन नाम का एक संगठन भगत सिंह की यादों को पाकिस्तान में संजोने का काम कई सालों से करता आ रहा है। इस संगठन के अध्यक्ष इम्तियाज कुरैशी बताते हैं,
भगत सिंह के में पाकिस्तान में बहुत सारे लोग लवर हैं, दीवाने हैं, उनसे प्यार करते हैं, हिंदुस्तान से भी ज्यादा प्यार करते हैं पाकिस्तान के शहरी। उसकी जिंदा मिसाल ये है कि भगत सिंह के वालद साहब दादा जान सरदार किशन सिंह, जो इनके वालद साहब थे, सरदार अर्जुन सिंह जो इनके ग्रैंडफादर थे, उनका बनाया हुआ घर आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। उनकी दरोदार भी वैसी ही हैं, छत भी वैसी ही है और दरवाजे भी वैसे के वैसे ही हैं, नेचुरल हालत में, जो आज से 125-25 साल पहले बनाया गया था। और फिर इसी तरह उनके ग्रैंडफादर सरदार अर्जुन सिंह ने जो एक आम का पेड़ लगाया था 120 साल पहले, वो आज भी वहाँ मौजूद है और मोहब्बत का सबूत दे रहा है, उसे वहाँ के लोगों ने काटा नहीं बल्कि उसे प्यार करते हैं। और हर साल 23 मार्च को उनका दिन मनाते हैं, शहीदी दिन उनका, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का।
इतने साल गुजर जाने के बाद भी भगत सिंह की एक तस्वीर जो हमारे सामने उभर कर आती है, वह एक ऐसे शख्स के रूप में है जिसने हर दिल को जीत लिया। फर्क बस इतना है कि जिसकी भावना जैसी हो, उसने भगत सिंह की छवि वैसी ही गढ़ ली। नवीन नेगी, BBC।
और अब कार्यक्रम के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। अमेरिका ने चीनी सामान पर 60 अरब डॉलर का शुल्क लगाने और अपने यहाँ चीन के निवेश को सीमित करने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉन बोल्टन को अपना नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। वो जनरल HR मैकमास्टर की जगह लेंगे। भारतीय विमानन कंपनी एयर इंडिया का एक विमान सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र से होते हुए इसराइल पहुंचा है। फायरफॉक्स इंटरनेट ब्राउजर बनाने वाली कंपनी मोजिला ने कहा है कि जब तक फेसबुक उपभोक्ताओं के डेटा की सुरक्षा के लिए कड़े नियम नहीं बनाता, तब तक वो फेसबुक पर विज्ञापन नहीं देंगे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने घोषणा की है कि वो देश के मुद्रा का एक बार फिर मूल्यांकन कर रहे हैं। यूरोपीय पुलिस एजेंसी यूरोपोल का कहना है कि एक बहुराष्ट्रीय सुरक्षा अभियान के तहत उन्होंने नाइजीरियाई अपराधी गुट को नष्ट कर दिया है। पुलिस का कहना है कि EIYE ब्रदरहुड नाम का ये गुट यूरोप में बड़े पैमाने पर मानव तस्करी का काम करता था। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के संक में इतना ही। आज स्टूडियो संभारा देवाशीष कुमार ने, फेसबुक पर आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाया ब्रजेश ने, शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।